हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। रिया अरहम को देखने के बाद काफी डर गई थी। उसने अकरम से कहा था, जब तक तुम अरहम को नहीं पकड़ लेते या उसकी जान नहीं ले लेते, तब तक हम अबीर राठौर के मैंशन में रहेंगे। अबीर ये सुनते ही काफी खुश हो गया था। उसके मन में लड्डू फूटने लगे थे, केवल इस एहसास से कि ज़ोया अब उसके साथ रहेगी। अकरम रिया की सेहत को देखते हुए किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने भी हाँ कह दिया था। अबीर ने देखा कि रिया किसी से डरी हुई है और यहाँ रहने की अनुमति मांग रही थी। उसने झट से हाँ कह दिया और कहा, जिस भी आदमी को तुम लोग ढूंढ रहे हो उसे मेरे आदमी ढूंढ निकालेंगे, तब तक तुम लोग अबीर राठौर के मैंशन में रह सकते हो। अबीर को लग रहा था कि इन लोगों का कोई पुराना दुश्मन यहाँ आ गया होगा जिससे ये लोग डर रहे थे, पर अबीर को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि जिससे ये लोग बच रहे थे वो असल में ज़ोया और रिया की इज्जत का कातिल था। अबीर इस बात की गहराई में ज़्यादा नहीं गया था, वो केवल इस बात से खुश हो रहा था कि ज़ोया उसके घर रहने आ रही थी और अब वो 24 घंटे उसे देख सकता था। अबीर को इतना खुश देखकर ज़ोया उसे घूर कर रह गई थी। अबीर उसकी हालत का मज़ा लेने लगा था। वहीं दूसरी ओर अरहम ने अपने आदमी रॉबिन को अबीर राठौर की जानकारी निकालने के लिए कह दिया था, क्योंकि वो किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता था। ज़ोया को जब से उसने देखा था उसे एक ही बात याद आ रही थी कि एक समय था जब ज़ोया अपने गाँव से बाहर कभी नहीं निकली थी। जब अरहम ने उसे शहर ले जाकर घुमाने की बात की थी तब ज़ोया ने उसे कहा था, मैं तुम्हारा हाथ थामकर पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ, और आज ज़ोया किसी और देश में थी और वो भी किसी और के साथ। अरहम ज़ोया को लेकर अब कुछ ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो चुका था, शायद इसलिए कि ज़ोया उसके या उसके भाई के बच्चे की माँ बनने वाली थी। अभी अरहम अपनी उधेड़बुन में ही गुम था कि तभी रॉबिन वहाँ आ गया और उसके हाथ में एक फाइल थी। अरहम ने उससे कहा, क्या मेरा काम हो गया है? जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था क्या वो हो गया है? क्या अबीर राठौर के बारे में कुछ पता चला? रॉबिन ने कहा, सर, अबीर राठौर की पूरी डिटेल्स इस फाइल में है, आप देख लीजिए। अरहम ने हाँ में सर हिलाया और रॉबिन को वहाँ से जाने के लिए कह दिया। वो अबीर की पूरी डिटेल पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो अबीर के बारे में पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे उसके माथे से पसीना निकलता जा रहा था। अबीर के बारे में और कुछ भी पढ़ने की हिम्मत नहीं थी। उसने वो फाइल फेंक मारी और अपनी आँखों के किनारे साफ करने लगा। उसे एहसास हो गया था कि अबीर के सामने से ज़ोया को लेकर आना उसके बस से बाहर था, लेकिन वो ज़ोया को लिए बिना नहीं रह सकता था। उसने अबीर राठौर की ज़िंदगी में घुसने के लिए अपने प्लान बनाना शुरू कर दिए थे। वहीं दूसरी ओर ज़ोया का यूं अबीर को घूरना अकरम ने अच्छे से नोटिस कर लिया था। वो समझ चुका था कि ज़ोया अबीर के घर नहीं जाना चाहती थी। अकरम सबसे एक्सक्यूज करके ज़ोया को एक साइड में ले गया। उसी कमरे की खिड़की के पास खड़े होकर दोनों बातें करने लगे। अकरम बोला, क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? ज़ोया ने कहा, भाई, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ? उस अमीर राठौर को मैं एक पल भी अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकती, और आप उसी के यहाँ रहने को कह रहे हैं? अकरम ने कहा, ज़ोया, ये समय गरम दिमाग से काम लेने का नहीं है। जरा ठंडे दिमाग से सोचो, अरहम हमारे फ्लैट तक आ गया है और तुम अच्छे से जानती हो वो अपनी मनमानी के लिए किस हद तक जा सकता है। और अभी राठौर कोई बुरा इंसान नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो वो कोई बुरा इंसान नहीं लगते हैं। तुम तो जानती हो उनकी क्या पावर है, हम लोग उनसे नहीं टकरा सकते हैं, और अभी हमारी सिचुएशन अरहम ठाकुर से टकराने की भी नहीं है। तुम देखो खुद को इस हालत में, क्या तुम जान ले पाओगी अरहम ठाकुर को? और बेटा, रिया की हालत तो तुम्हें पता ही है, वो कुछ दिन पहले ही कोमा से बाहर आई है, और अगर फिर से उसके सामने अरहम या कोई और आया तो मुझे नहीं लगता फिर मैं रिया को कभी बचा पाऊंगा। मैं रिया को और तुम्हें लेकर किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं ले सकता हूँ। और बेटा, तुम अबीर को पसंद नहीं करती हो, लेकिन तुम अबीर को खुद को पसंद करने से नहीं रोक सकती हो। जरा सोचो प्लीज और अपना मूड ठीक करो, और मैं चाहता हूँ तुम खुशी खुशी हमारे साथ अभी राठौर के घर चलो। अकरम ज़ोया को उसे खिड़की के पास छोड़कर वापस रिया के पास चला आया। तब अबीर ने कहा, आप लोग चलिए, मेरे आदमी हॉस्पिटल की सारी फॉर्मैलिटीज पूरी कर लेंगे। अकरम ने अबीर को थैंक्स कहा और वो रिया को लेकर अबीर के एक आदमी के साथ उसकी गाड़ी के पास ले जाने लगा। अकरम ने अबीर को ज़ोया को लेकर आने का इशारा कर दिया था। अबीर हल्का सा मुस्कुराया और ज़ोया की ओर चल दिया। ज़ोया खिड़की से बाहर देख रही थी। ठंडी ठंडी हवाएं उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। ज़ोया ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थीं और वो सोचने लगी थी कि वो क्या करे क्या ना करे। अकरम के काफ़ी एहसान थे उस पर, वो इस बात को नहीं नकार सकती थी। अकरम ने अगर उस दिन हिम्मत नहीं दिखाई होती तो अब तक राजवीर भी उसकी इज्जत का कत्ल कर चुका होता। फिर ज़ोया के पास मरने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहता। ज़ोया सोच ही रही थी कि अबीर उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। ज़ोया की आंखें बंद थीं, उसे एहसास ही नहीं हुआ था कि उसके पीछे कोई है। वो तो बस अपनी सोच में ही खोई हुई थी। हवा की वजह से ज़ोया के बाल उड़कर अबीर के मुंह पर पड़ रहे थे। अबीर भी अपनी आंखें बंद करके उसके बालों की खुशबू में खो सा गया था। बालों के उड़ने की वजह से ज़ोया के कंधे के पास का थोड़ा सा हिस्सा और बैक नेक साइड दिखाई दे रही थी, जो कि एकदम दूध जैसे सफ़ेद थे। अबीर उसके और करीब चला गया। वो बहक सा रहा था ज़ोया के जिस्म की खूबसूरती से। वो उसके कंधों को अपने होठों से छूने ही जा रहा था कि वो एकदम से रुक गया। उसने कंधों पर किस करने के बजाय उसके कान में अचानक से भौं कर दिया, जिससे ज़ोया बेहद डर गई और चिल्ला पड़ी। गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी कमर में हाथ डालकर अबीर ने उसे पकड़ लिया और कुछ देर वे दोनों एक दूसरे को ऐसे ही देखते रहे। वे दोनों काफ़ी करीब थे। अबीर ने ज़ोया की कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी और धीरे धीरे उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से मिलने ही वाले थे कि तभी वो थोड़ा होश में आ गई। जैसे ही उसे समझ आया कि उसके साथ क्या होने वाला था, ज़ोया ने अचानक अबीर को धक्का दे दिया। वहीं दूसरी ओर शमशेर सिंह वीडियो कॉल पर एक बेहद कम कपड़ों में लड़की को देखकर हैरान थे। वो सोच रहे थे कि उन्होंने उसे कहाँ देखा था। तभी उनके दिमाग में आया कि कल रात ही तो राजवीर ने इसकी फ़ोटो दिखाई थी और बताया था कि ये अनुराधा है। शमशेर सिंह अनुराधा को देखकर हैरान थे और बोले, क्या तुम जानती हो तुमने किस पर हाथ डाला है? किडनैप करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शमशेर सिंह बड़े ही गुस्से से बोला था। अनुराधा बीच में ही बोली, श्श, रिलैक्स मिस्टर शमशेर सिंह, इतना गुस्सा इस उम्र में आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और तभी शमशेर सिंह से बात करते करते अनुराधा ने अपने फ़ोन से अपनी अफ्रीकी दोस्त को एक SMS भेजा। SMS मिलते ही उसकी दोस्त ने एक ज़ोरदार तमाचा शमशेर सिंह के मुंह पर मार दिया। चांटा लगते ही शमशेर सिंह के नाक से खून आना शुरू हो गया था। अभी शमशेर फिर कुछ बोलने वाला था कि तुम्हारी हिम्मत, इतना ही कहा था कि तभी एक और तमाचा शमशेर सिंह के गाल पर पड़ चुका था। तब अनुराधा उसकी शक्ल देखकर हंसने लगी थी।
शमशेर समझ चुके थे कि अगर वो एक वर्ड भी बोलेगा तो वो उसे एक चांटा मार देगी, इसलिए वो बिल्कुल खामोश हो गया था। तब अनुराधा हंसते हुए चुप हुई और बोली, मुझे पता है तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ। तुम्हारे उस बेवकूफ़ एजेंट ने तुम्हें मेरी फ़ाइल दिखाई होगी, लेकिन तुमने बिल्कुल भी उस पर यकीन नहीं किया होगा। आखिर शमशेर सिंह को जब तक किसी बात को तसल्ली नहीं हो जाती, तब तक वो किसी पर यकीन नहीं करता है। तब शमशेर ने अपने एक हाथ की उंगली उठाई, मानो वो अनुराधा से बात करने की परमिशन मांग रहा हो। अनुराधा ने कहा, बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम? तुम हो कौन और क्यों कर रही हो ये सब? शमशेर ने पूछा। तब अनुराधा एकदम संजीदा हो गई थी और गुस्से में बोली, तुझे अपनी टीम का एक ऑफिसर याद है, चीफ कमांडर विक्रम सेठी, मैं उसकी बेटी हूँ। जैसे ही अनुराधा ने अपने पिता का नाम लिया, शमशेर के होश उड़ गए। खुद ब खुद शमशेर के मुंह से निकल गया, अनु, ओह अनु, मीन अनुराधा। और उसके सामने अतीत के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे थे और वो अब सब कुछ समझ गया था कि ये लड़की ये सब कुछ क्यों कर रही थी और क्यों उसने शमशेर को अपना निशाना बनाया था। शमशेर की ज़िंदगी का वो सबसे कठिन वक्त था जब उसने छोटी सी अनु को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। उसके नन्हे से जिस्म पर घाव देखकर उसकी रूह तक तड़प उठी थी, लेकिन वो अपने देश के हाथों मजबूर था। वो देश की सिक्योरिटी को लेकर कोई चांस नहीं ले सकता था। शमशेर की आंखों में आंसू आ गए थे। अनुराधा ने एक झटके से फ़ोन काट दिया। उसकी आंखों के किनारे भी भीग चुके थे। उसने बेरहमी से अपनी आंखें मस ली और अपने चेहरे पर एक झूठी स्माइल लाने की कोशिश करने लगी थी। अनुराधा उस कमरे से निकलकर बराबर वाले कमरे में चली गई और बेड की ओर देखकर मुस्कुराने लगी। उस बेड पर केवल एक अंडरवेयर में एक आदमी बेहोश लेटा हुआ था। अंडरवेयर के अलावा उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके दोनों हाथ बड़ी ही मजबूती से लोहे की बेड़ियों से बंधे हुए थे। वो और कोई नहीं बल्कि अरमान ठाकुर था।